एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
नमस्ते। एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है।
हाँ, और आज भी इतने सालों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं विक्टर ई फ्रैंकल की क्लासिक किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग,
हिंदी में कहें तो अर्थ की खोज में मनुष्य।
और ये किताब ना कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाती है।
जैसे कि
जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या बहुत भयानक मुश्किलों के बीच भी जीने का कोई मतलब, कोई मकसद ढूंढा जा सकता है?
ये सवाल तो हर दौर में अहम रहे हैं,
और आज के समय में शायद और भी ज्यादा। मतलब जब जिंदगी में कभी खालीपन लगता है या कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है,
हाँ, तब ये सवाल मन में उठता है कि आखिर ये सब क्यों, हम जी क्यों रहे हैं।
बिल्कुल। और ये किताब कहती है कि इंसान की जो सबसे गहरी इच्छा है ना, वो सुख पाना नहीं है,
ना ही शक्ति पाना जैसा एडलर मानते थे।
सही। बल्कि वो है अपने जीवन में एक अर्थ खोजना, एक मीनिंग।
तो इस कमाल के विचार के पीछे जो शख्स थे, विक्टर एमिल फ्रैंकल, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
हाँ, विक्टर फ्रैंकल 1905 से 1997 तक उनका जीवन रहा। वो ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे,
और उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की एक पूरी विचार पद्धति दी जिसे साइकोथेरेपी का तीसरा वियना स्कूल भी कहते हैं।
लेकिन वो सिर्फ एक अकादमिक विद्वान नहीं थे, उनकी कहानी बहुत अलग है।
हाँ, यही बात उन्हें खास बनाती है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे थे, उन्होंने वो सब खुद झेला था।
बिल्कुल। फ्रैंकल हॉलोकॉस्ट से गुजरे थे, वो नाजी यातना शिविरों में कैदी थे
1942 से 1945 के बीच, ऑशविट्स, डाखो जैसे भयानक शिविरों में।
जरा सोचिए, ये कोई लाइब्रेरी में बैठकर लिखी गई किताब नहीं है, ये उस अनुभव की आग में तपकर निकली है।
उन्होंने वहां अपनी माता पिता को खोया, भाई को, अपनी गर्भवती पत्नी को, मतलब सब कुछ छीन लिया गया था।
उनका नाम तक छीन लिया गया, सिर्फ एक नंबर दे दिया गया, 119104।
हाँ, लेकिन वो एक ट्रेन्ड मनोचिकित्सक भी थे, तो एक तरफ वो खुद वो सब झेल रहे थे
और दूसरी तरफ वो लगातार विश्लेषण कर रहे थे, खुद का भी और साथ ही कैदियों का भी।
बिल्कुल। वो एक ही समय में पीड़ित भी थे और एक ऑब्जर्वर, एक विश्लेषक भी।
और यही दोहरा नजरिया उनकी बातों को इतनी गहराई और विश्वसनीयता देता है।
सही कहा। तो ये किताब सिर्फ एक संस्मरण नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और न ही ये सिर्फ साइकोलॉजी की थ्योरी बुक है,
ये दोनों का मिश्रण है। और उससे भी बढ़कर ये इंसान की जो अंदरूनी ताकत होती है ना, जिसे हम जीजी विशा कहते हैं,
हाँ, जीने की इच्छा शक्ति,
उसका एक सबूत है। ये दिखाती है कि बाहरी हालात हमें कितना भी तोड़ दें,
हमारे अंदर फिर भी कुछ ऐसा बचता है जिसे कोई छीन नहीं सकता।
तो फ्रैंकल का जो मुख्य तर्क है वो यही अर्थ की इच्छा वाला है।
हाँ, उनका मानना था कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत, सबसे पहली प्रेरणा अर्थ की इच्छा है, विल टू मीनिंग।
ये फ्रॉइड की सुख की इच्छा या एडलर की शक्ति की इच्छा से अलग है।
बिल्कुल। उन्होंने शिविरों में भी ये देखा कि जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी,
कोई मकसद था, कोई लक्ष्य कि मुझे बाहर निकलकर ये करना है या किसी से मिलना है,
हाँ, उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा था, उनमें जीने की ताकत ज्यादा थी।
और जब ये अर्थ की इच्छा पूरी नहीं होती तब क्या होता है?
तब पैदा होता है वो जिसे फ्रैंकल ने कहा अस्तित्वगत शून्य, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम।
अच्छा, ये क्या है?
ये वो अंदर का खालीपन है, बोरियत, जिंदगी का बेमतलब लगना, दिशाहीनता। फ्रैंकल का मानना था कि आज के समाज में ये बहुत आम है, और कई मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, नशे की लत, आक्रामकता,
उनकी जड़ में कहीं ना कहीं ये खालीपन ही होता है।
हाँ, लोग उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं किसी न किसी चीज से।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलिए उन शिविरों के अनुभवों पर वापस चलते हैं, क्योंकि वहीं से ये सिद्धांत निकले हैं।
हाँ, फ्रैंकल ने बताया कि कैदी आमतौर पर तीन मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरते थे। पहला था शॉक,
यानी आघात। शिविर में आते ही सब कुछ जैसे एक भयालक सपने जैसा लगता होगा।
बिल्कुल। और कई लोगों को आखिर तक एक झूठी उम्मीद रहती थी कि शायद उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
इसे फ्रैंकल ने छूट का भ्रम कहा था, डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव।
हाँ, और फिर वो प्रक्रिया शुरू होती थी जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता,
अमानवीकरण, कपड़े छीन लेना, बाल काट देना, नाम की जगह सिर्फ एक नंबर,
पहचान मिटाने की पूरी कोशिश। लेकिन फ्रैंकल ने यह भी नोट किया कि कभी कभी इसी निराशा में एक अजीब तरह का मजाक भी उभरता था,
क्रूर हास्य, ग्रिम ह्यूमर, शायद खुद को बचाने का एक तरीका।
शायद। और शुरुआती सदमे के बाद एक तरह की तटस्थ जिज्ञासा सी आ जाती थी, अब क्या होगा।
यहीं पर शायद वो अंदरूनी चुनाव होता होगा कि जीना है या हार मान लेनी है।
बिल्कुल। फिर आता था दूसरा चरण, उदासीनता, एपथी।
मतलब रोज की भयानक चीजें देखकर भी कोई फर्क ना पड़ना।
हाँ, रोज मार पिटाई, भूख, मौतें, धीरे धीरे कैदी भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे।
ये शायद जरूरी भी था, क्योंकि लगातार डर और घृणा महसूस करना तो इंसान को पागल कर दे।
हाँ, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था, अपनी मानसिक ऊर्जा बचाने के लिए।
लेकिन इसी दौर में कुछ और भी हुआ है ना,
कुछ अंदरूनी बदलाव।
हाँ, ये बहुत कमाल की बात है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया सिमटती गई, गंदगी, भूख, काम,
वैसे वैसे कई लोगों का अंदरूनी जीवन, उनका मानसिक संसार ज्यादा गहरा हो गया।
फ्रैंकल ने खुद लिखा है कि वो अपनी पत्नी की कल्पना से बातें करते थे, उनके प्यार को महसूस करते थे।
और यहीं उन्हें वो एहसास हुआ जो बहुत मशहूर हुआ, मनुष्य का उद्धार प्रेम के माध्यम से और प्रेम में है।
हाँ, कि प्रेम मौत और दूरी से भी परे है, वो एक ताकत है।
सिर्फ प्रेम ही नहीं, शायद और भी छोटी छोटी चीजें सहारा बनी। बिल्कुल, जैसे प्रकृति की सुंदरता, एक सूर्यास्त या किसी साथी कैदी की वायलिन की धुन।
इन छोटी चीजों में भी गहरा सुकून मिल सकता था।
ये दिखाता है कि कैसे अनुभव से भी अर्थ मिल सकता है,
चाहे वो प्यार का अनुभव हो या सुंदरता का।
और शायद सबसे बड़ी खोज थी वो आंतरिक स्वतंत्रता वाली बात।
हाँ, ये तो कमाल का विचार है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों,
एक आजादी हमेशा इंसान के पास रहती है।
कौन सी आजादी?
ये चुनने की आजादी कि वो इन हालात का सामना कैसे करेगा, उसका रवैया क्या होगा।
मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता, अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता।
क्या खूब कहा है, ये सीधे अनुभव से निकली बात है।
उन्होंने ऐसे कैदी देखे जो अपनी आखिरी रोटी भी दूसरों के साथ बांट लेते थे।
वो कोई संत नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस पल में अपनी इंसानियत को चुना।
यहीं पर भविष्य के लक्ष्य का महत्व भी समझ आता है, वो क्यों वाली बात।
हाँ, नीचे का वो कथन जिसे फ्रैंकल ने अक्सर दोहराया, जिसके पास जीने का क्यों होता है वो लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है।
तो जिनका कोई लक्ष्य था, कोई उम्मीद थी
कि किसी अपने से मिलना है या कोई अधूरा काम पूरा करना है,
वो ज्यादा टिक पाए।
हाँ, उनमें अविश्वसनीय सहन शक्ति आ जाती थी।
लेकिन जिनकी उम्मीद टूट गई, जिनका क्यों मर गया,
वो अक्सर हिम्मत हार जाते थे, मानसिक और शारीरिक रूप से। इसे फ्रैंकल ने गिव अपाइटिस कहा था।
तो जीने के लिए भविष्य की तरफ देखना, कोई लक्ष्य होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और तीसरा चरण मुक्ति के बाद का,
वो था मोह भंग का, डिसिल्यूजनमेंट। आजादी मिल गई, लेकिन
वो खुशी सीधी सादी नहीं थी।
नहीं, इतने सालों की यंत्रणा के बाद नॉर्मल दुनिया में वापस आना, खुशी महसूस कर पाना भी मुश्किल था।
कई लोगों को डीपर्सनलाइजेशन जैसा महसूस हुआ होगा, जैसे सब कुछ नकली है, सपने जैसा।
हाँ, और साथ में कड़वाहट भी थी। दुनिया उनके दुखों के प्रति उदासीन लगती थी, अपनों को खोने का गम था।
और एक खतरा भी था शायद, नैतिक भटकाव का।
हाँ, कुछ लोग सोचने लगे कि हमने इतना सहा है तो अब हमें कुछ भी करने का हक है।
फ्रैंकल मानते थे कि असली लड़ाई तो शायद आजादी के बाद शुरू हुई।
हाँ, उन अंदरूनी जख्मों से उभरने की, एक जिम्मेदार जीवन फिर से जीने की।
तो ये जो सारे अनुभव थे, ये सिर्फ दर्द भरी कहानियां नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो जमीन है जिस पर फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी, लोगो थेरेपी को खड़ा किया।
लोगोस यानी अर्थ, तो ये अर्थ केंद्रित थेरेपी है।
इसका मूल सिद्धांत वही है, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है अर्थ की इच्छा।
और ये अर्थ कहीं बाहर से थाली में परोसा हुआ नहीं मिलता, इसे खोजना पड़ता है।
हाँ, हर पल, हर स्थिति में। फ्रैंकल ने इसके तीन मुख्य रास्ते बताए।
पहला,
काम करके या कुछ बनाकर, मतलब कोई कर्म करके, दुनिया में अपना योगदान देकर,
अपनी भूमिका को सार्थक बनाकर।
बिल्कुल। दूसरा रास्ता है किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके,
दुनिया की अच्छाई, सच्चाई, सुंदरता को महसूस करना।
हाँ,
या किसी इंसान को गहराई से जानना और प्यार करना।
हाँ,
और तीसरा रास्ता जो शायद सबसे अनोखा है,
वो है दुख के प्रति अपने रवैये से अर्थ खोजना।
मतलब जब आप हालात बदल नहीं सकते, जैसे कोई लाइलाज बीमारी या कोई बड़ा नुकसान,
तब भी आप ये चुन सकते हैं कि आप उसका सामना कैसे करेंगे।
हाँ, साहस से, गरिमा से, दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर, इस तरह दुख भी एक मानवीय जीत बन सकता है।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि फ्रैंकल दुख को अच्छा नहीं कह रहे थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वो जीवन का हिस्सा बनी जाए, जब उससे बच ना सकें,
तब भी उसमें अर्थ ढूंढने की गुंजाइश रहती है।
अर्थ दुख में नहीं, दुख के प्रति हमारे नजरिए में है।
वो जो कहा था ना,
जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है।
हाँ, ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है।
लोगोथेरेपी में कुछ खास तकनीकें भी हैं, है ना? हाँ, जैसे विरोधाभासी इरादा, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन।
ये क्या है?
जिस चीज से डर लगता है, मजाक में उसी को और ज्यादा चाहने या करने की कोशिश करना।
अच्छा, इससे क्या होता है?
इससे उस डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है।
दिलचस्प है। और दूसरी,
डी रिफ्लेक्शन मतलब अपनी समस्याओं पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के बजाय
अपना ध्यान किसी बाहरी सार्थक लक्ष्य पर लगाना।
हाँ, या किसी दूसरे इंसान पर। जैसे अगर कोई स्टेज पर बोलने से घबराता है
तो वो ये सोचने के बजाय कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, ये सोचे कि मैं दर्शकों को क्या संदेश देना चाहता हूँ।
बिल्कुल, ध्यान खुद से हटाकर अपनी भूमिका पर ले जाना।
और आखिर में फ्रैंकल दुखद आशावाद की बात करते हैं,
ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म।
हाँ, ये क्या है?
ये जीवन की जो अनिवार्य मुश्किलें हैं, दर्द, अपराध बोध और मृत्यु,
जिन्हें उन्होंने ट्रेजिक ट्रायड कहा।
हाँ, उनके बावजूद जीवन को हाँ कहने की क्षमता, ये मानना कि जीवन में दुख है, कमियां हैं। पर फिर भी ये जीने लायक है, इसमें अर्थ खोजा जा सकता है।
ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मुश्किल हालात का दर्शन नहीं है।
बिल्कुल, सोचिए जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, सेहत खराब हो गई,
हमारा पहला रिएक्शन होता है मेरे साथ ही क्यों।
फ्रैंकल कहते हैं, सवाल बदलो, पूछो अब जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं इसका सामना हिम्मत और जिम्मेदारी से कैसे कर सकती हूँ।
हाँ, ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर एक्टिव मोड में लाता है,
और वो अस्तित्वगत शून्य वाली बात, वो खालीपन।
आज की भागदौड़ वाली लाइफ में ये बहुत लोगों को महसूस होता है, सब कुछ है पर कुछ फेल्ड है।
हाँ, एक कमी सी लगती है।
फ्रैंकल की सलाह है, रुको मत, सक्रिय रूप से अर्थ खोजो।
कैसे?
अपने काम में देखो, क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद है।
रिश्तों में गहराई लाओ, कला प्रकृति का आनंद लो,
किसी सामाजिक काम से जुड़ो, अपना कोई लक्ष्य बनाओ।
मानसिक सेहत के लिए भी ये बहुत काम का है, जैसे चिंता या तनाव।
हाँ, हम अक्सर उसी में उलझे रहते हैं।
डी रिफ्लेक्शन का सिद्धांत यहाँ काम आता है, ध्यान हटाओ,
किसी ऐसे काम में लग जाओ जो पसंद हो, जिसमें मन लगे, या किसी की मदद करो।
अक्सर दूसरों की सेवा में हमें अपनी तकलीफें छोटी लगने लगती हैं, एक बड़ा उद्देश्य मिल जाता है।
और अपने फैसले लेते समय भी ये सोच काम आ सकती है।
कैसे?
कि हम सिर्फ मजे या आराम के लिए चुन रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि किस रास्ते पर चलकर हम ज्यादा सार्थक योगदान दे पाएंगे,
अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे।
हाँ, फ्रैंकल याद दिलाते हैं, आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है, जीवन हमसे सवाल पूछ रहा है,
और हमारे चुनाव ही हमारे जवाब हैं।
यहाँ तक कि उम्र बढ़ने या मृत्यु के बारे में सोचते हुए भी।
हाँ, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई से नहीं, उसकी गहराई से है।
हमने जो प्यार दिया, जो काम किया, जो जिम्मेदारियां निभाई, वही मायने रखता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं।
बिल्कुल, हमारे पास हमेशा चुनने की आजादी है,
अपना नजरिया चुनने की, अपना अर्थ खोजने की, और ये अर्थ कहीं बाहर नहीं,
हमारे अंदर है, हमारे चुनावों में, हमारी भूमिकाओं में। ये बहुत ताकत देने वाला विचार है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई, वो है प्रेम की शक्ति और भविष्य के लक्ष्य का महत्व।
हाँ, कैसे सबसे मुश्किल वक्त में भी कोई उम्मीद, कोई प्यार हमें थामे रख सकता है।
ये किताब याद दिलाती है कि इंसान की आत्मा में कितनी ताकत है अगर उसे जीने का क्यों मिल जाए।
ये हमें अपनी भूमिका को, अपने जीवन के अर्थ को गंभीरता से लेने के लिए कहती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।